एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर।
बंजर जमी से तू गाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। बंजर जमी से तू गाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। ये आसमान और ये जमीन गाते हैं तेरी महिमा।
परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर।
हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। ये जिंदगी मेरी सदा करती है तेरी महिमा।
परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से ही है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूं। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को और हृदयों को खोल दे जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं। मेरे श्रोताओं के संग विशेष रूप से ओ पिता, उन्हें तेरे वचन को सुनने और उसे बहुताय से आशीष पाने के लिए मदद कर। मेरे संग ओ पिता तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे, ताकि मैं तेरा वचन को तेरे सामर्थ्य के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है एक बड़ी खाड़ी ठीक की गई, भाग एक। हम एक दृष्टांत लुका 16 का 19 से 31 में पाते हैं। यह धनवान व्यक्ति और लाजर का दृष्टांत है। इसमें मसीह दिखाते हैं कि इस जीवन में मनुष्य अपने अनंत भाग्य का निर्णय करते हैं। परिवीक्षा के समय में प्रत्येक आत्मा को ईश्वर की कृपा प्रदान की जाती है, लेकिन यदि मनुष्य अपने अवसरों को आत्म प्रसन्नता में बर्बाद कर देते हैं तो वे स्वयं को अनंत जीवन से वंचित कर लेते हैं। उन्हें परिवीक्षा के पश्चात कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। अपनी पसंद से उन्होंने अपने और अपने ईश्वर के बीच एक अवैध खाई बना ली है। यह दृष्टांत उन अमीरों के बीच अंतर दर्शाता है जिन्होंने परमेश्वर पर निर्भरता नहीं बनाई है, और उन गरीबों के बीच जिन्होंने परमेश्वर पर निर्भरता बनाई है। मसीह दिखाता है कि वह समय आ रहा है जब दोनों वर्गों की स्थिति उलट जाएगी। जो लोग इस दुनिया की वस्तुओं में गरीब हैं, फिर भी जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और दुख में धैर्य रखते हैं, वे एक दिन उन लोगों से ऊपर उठेंगे जो अब दुनिया के सर्वोच्च पदों पर हैं। लेकिन जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित नहीं किया है, मसीह ने कहा एक धनवान व्यक्ति था जो बैंगनी और बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनता था और प्रतिदिन शान शौकत के जीवन व्यतीत करता था, और लाजर नाम का एक भिखारी था जो घावों से भरा हुआ उसके द्वार पर रखा हुआ था, और वह धनवान की मेज से गिरने वाले टुकड़ों से अपना पेट भरना चाहता था। धनी व्यक्ति अन्यायी न्यायाधीश द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले वर्ग से संबंधित नहीं था, जिसने खुले तौर पर ईश्वर और मनुष्य के प्रति अपनी उपेक्षा की घोषणा की थी। उसने अब्राहम का पुत्र होने का दावा किया। उसने भिखारी के साथ हिंसा नहीं की या उसे दूर जाने के लिए मजबूर नहीं किया, क्योंकि उसे देखना अप्रिय था। यदि मानवता के गरीब घृणित नमूने को उसके द्वार में प्रवेश करते समय उसे देखकर सांत्वना मिल सकती थी, तो धनी व्यक्ति उसे वहीं रहने के लिए तैयार था। लेकिन वह अपने पीड़ित भाई की जरूरतों के प्रति स्वार्थी रूप से उदासीन था। उस समय कोई अस्पताल नहीं था जहां बीमारों की देखभाल की जा सके। पीड़ित और जरूरतमंद लोगों को उन लोगों के ध्यान में लाया जाता था जिन्हें प्रभु ने धन सौंपा था, ताकि उन्हें सहायता और सहानुभूति मिल सके। ऐसा ही भिखारी और अमीर आदमी के साथ हुआ। लाजर को मदद की बहुत जरूरत थी, क्योंकि उसके पास दोस्त, घर, पैसा या भोजन नहीं था। फिर भी उसे दिन ब दिन स्थिति में रहने दिया गया, जबकि अमीर रईस की हर जरूरत पूरी की गई, जो अपने साथी प्राणियों के दुखों को दूर करने में भरपूर सक्षम था। वह अपने लिए जीता था जैसे आज कई लोग जीते हैं। आज हमारे आसपास बहुत से लोग हैं जो भूखे, नंगे और बेघर हैं। इन जरूरतमंद पीड़ित लोगों को अपनी संपत्ति देने में लापरवाही हम पर अपराध का बोझ डालती है, जिसका सामना करने से हम एक दिन डरेंगे। सभी लालच की निंदा मूर्ति पूजा के रूप में की जाती है। सभी स्वार्थी भोग ईश्वर की दृष्टि में अपराधी है। परमेश्वर ने अमीर आदमी को अपने धन का प्रबंधक बनाया था, और यह उसका कर्तव्य था कि वह इस भिखारी जैसे मामलों की ध्यान दे। आदेश दिया गया था, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हम यह पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 6:5 में। और तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हम यह पढ़ते हैं लव व्यवस्था 19:18 में। धनवान व्यक्ति यहूदी था और वह ईश्वर की आज्ञा से परिचित था, लेकिन वह भूल गया था कि उसे जो साधन और क्षमताएं सौंपी गई थी उनके उपयोग के लिए वह उत्तरदायी था। प्रभु की कृपा उस पर भरपूर थी, लेकिन उसने उनका उपयोग स्वार्थी रूप से किया, अपने निर्माता को नहीं बल्कि खुद को सम्मानित करने के लिए। उसकी प्रचुरता के अनुपात में ही उसका दायित्व था कि वह अपनी प्रतिभाओं का उपयोग मानवता के उत्थान के लिए करे। यह प्रभु की आज्ञा थी, लेकिन धनवान व्यक्ति को ईश्वर के प्रति अपने दायित्व का कोई ध्यान नहीं था। वह धन उधार देता था और जो उधार देता था उस पर ब्याज लेता था, लेकिन ईश्वर ने जो उधार दिया था उस पर वह ब्याज नहीं देता था। उसके पास ज्ञान और प्रतिभाएं थी, लेकिन उसने उन्हें निखारा नहीं। ईश्वर के प्रति अपनी जवाबदेही को भूलकर उसने अपनी सारी शक्तियां भोग विलास में लगा दी। वह जिस चीज से घिरा हुआ था, उसके मनोरंजन के साधन, उसके मित्रों की प्रशंसा और चापलूसी, सब उसके स्वार्थी आनंद के लिए थे। वह अपने मित्रों की संगति में इतना मग्न था कि उसे ईश्वर की दया की सेवा में सहयोग करने की अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं था। उसके पास परमेश्वर के वचन को समझने और उसकी शिक्षाओं का पालन करने का अवसर था, लेकिन उसने जो सुखप्रिय समाज चुना था, उसने उसका समय इतना व्यस्त कर दिया कि वह सनातन परमेश्वर को भूल गया। प्यारो, समय आया जब दोनों व्यक्तियों की स्थिति में बदलाव आया। बेचारे व्यक्ति को दिन प्रतिदिन कष्ट सहना पड़ा, लेकिन उसने धैर्यपूर्वक और शांतिपूर्वक सहन किया। समय बीतने के साथ उसकी मृत्यु हो गई और उसे दफनाया गया। उसके लिए शोक करने वाला कोई नहीं था, लेकिन कष्ट सहने में धैर्य के द्वारा उसने मसीह के लिए गवाही दी। उसने अपने विश्वास की परीक्षा को सहन किया और उसकी मृत्यु पर उसे स्वर्गदूतों द्वारा अब्राहम की गोद में ले जाते हुए दर्शाया गया है। लाजर उन पीड़ित गरीबों का प्रतिनिधित्व करता है जो मसीह में विश्वास करते हैं। जब तुरही बजेगी और कब्रों में पड़े सभी लोग मसीह की आवाज सुनेंगे और बाहर निकलेंगे तो उन्हें अपना इनाम मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर में उनका विश्वास मात्र एक सिद्धांत नहीं था बल्कि एक वास्तविकता थी। धनवान व्यक्ति भी मर गया और उसे दफनाया गया और नरक में उसने पीड़ा में अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम को और उसकी गोद में लाजर को देखा और उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करो और लाजर को भेजो ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। इस दृष्टांत में मसीह लोगों से उनकी अपनी जमीन पर मिल रहे थे। मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच अस्तित्व की एक सचेत अवस्था का सिद्धांत उन लोगों में से कई लोगों द्वारा माना जाता था जो मसीह के शब्दों को सुन रहे थे। उद्धारकर्ता उनके विचारों को जानता था और उसने अपने दृष्टांत को इस तरह से तैयार किया कि इन पूर्व कल्पित विचारों के माध्यम से महत्वपूर्ण सत्यों को आत्मसात किया जा सके। उसने अपने श्रोताओं के सामने एक दर्पण रखा जिसमें वे खुद को ईश्वर के साथ अपने सच्चे संबंध में देख सकते थे। उसने प्रचलित राय का उपयोग उस विचार को व्यक्त करने के लिए किया जिसे वह सभी के लिए प्रमुख बनाना चाहता था, कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति के लिए मूल्यवान नहीं है क्योंकि उसके पास जो कुछ भी है वह केवल ईश्वर द्वारा उधार दिए जाने के रूप में उसका है। इन उपहारों का दुरुपयोग उसे सबसे गरीब और सबसे पीड़ित व्यक्ति से भी नीचे ले जाएगा जो ईश्वर से प्यार करता है और उस पर भरोसा करता है। मसीह अपने श्रोताओं से यह समझने की इच्छा रखता है कि मृत्यु के बाद मनुष्य के लिए आत्मा का उद्धार प्राप्त करना असंभव है। अब्राहम को उत्तर देते हुए दर्शाया गया है, बेटा याद रखो कि तुमने अपने जीवन काल में अपनी अच्छी चीजें प्राप्त की और वैसे ही लाजर ने बुरी चीजें, लेकिन अब वह शांति पा रहा है और तुम पीड़ित हो। और इन सब के अलावा हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी खाई तय की गई है ताकि जो लोग यहाँ से तुम्हारे पास जाना चाहते हैं वे ना जा सकें, ना ही वे जो वहाँ से हमारे पास आना चाहते हैं वे आ सके। इस प्रकार मसीह ने दूसरी परिवीक्षा की प्रतीक्षा करने की निराशा का प्रतिनिधित्व किया। यह जीवन मनुष्य को दिया गया एकमात्र समय है जिसमें वह अनंत काल के लिए तैयारी कर सकता है। धनी व्यक्ति ने यह विचार नहीं छोड़ा था कि वह अब्राहम की संतान है और अपने संकट में उसे इस रूप में दर्शाया गया है। सहायता के लिए पुकारते हुए उसने प्रार्थना की, पिता अब्राहम, मुझ पर दया करो। उसने परमेश्वर से नहीं बल्कि अब्राहम से प्रार्थना की। इस प्रकार उसने दिखाया कि उसने अब्राहम को परमेश्वर से ऊपर रखा है और वह उद्धार के लिए अब्राहम के साथ अपने रिश्ते पर निर्भर था। क्रूस पर चोर ने मसीह से प्रार्थना की। उसने कहा, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना। हम यह पढ़ते हैं लूका 23 का 42 में। और तुरंत जवाब आया, मैं आज तुझसे सच कहता हूँ, जब यीशु मसीह अपमान और पीड़ा में क्रूस पर लटके हुए थे उस समय उससे यह प्रतिज्ञा दिए कि तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। लेकिन अमीर आदमी ने अब्राहम से प्रार्थना की और उसकी याचिका स्वीकार नहीं की गई। केवल मसीह को इज़राइल को पश्चाताप और पापों की क्षमा देने के लिए एक राजकुमार और उद्धारकर्ता होने के लिए ऊंचा किया गया है, कहता है प्रेरितों के काम 5:31। और हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 4:12 में कि किसी दूसरे में उद्धार नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह, उसी का नाम स्वर्ग के नीचे पृथ्वी में है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। धनी व्यक्ति ने अपना जीवन आत्म प्रसन्नता में बिताया था और बहुत देर से उसे एहसास हुआ कि उसने अनंत काल के लिए कोई प्रावधान नहीं किया था। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उसने अपने भाइयों के बारे में सोचा जो उसके जैसे ही रहेंगे, खुद को खुश करने के लिए जिएंगे। फिर उसने अनुरोध किया, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता कि आप उसे लाजर से मेरे पिता के घर भेज दें, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वह उनके सामने गवाही दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी इस यातना के स्थान में आए। लेकिन अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और भविष्यवक्ता हैं, उन्हें सुनने दो। और उसने कहा, नहीं पिता अब्राहम, लेकिन अगर कोई मरे हुओं में से उनके पास गया तो वे पश्चाताप करेंगे। और उसने उससे कहा, अगर वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की बात नहीं सुनते हैं तो वे भी नहीं मानेंगे, भले ही कोई मरे हुओं में से जी उठे। जब अमीर आदमी ने अपने भाइयों के लिए अतिरिक्त सबूत मांगे तो उसे साफ तौर पर बताया गया कि अगर यह सबूत दिया जाए तो वे राजी नहीं होंगे। उसके अनुरोध ने ईश्वर पर एक प्रतिबिंब डाला। यह ऐसा था जैसे कि अमीर आदमी ने कहा था, अगर आपने मुझे और अच्छी तरह से चेतावनी दी होती तो मैं अब यहाँ नहीं होता। इस अनुरोध के जवाब में अब्राहम का प्रतिनिधित्व किया गया है, जैसे कह रहे हो, तुम्हारे भाइयों को पर्याप्त चेतावनी दी गई है, उन्हें प्रकाश दिया गया है परंतु उन्होंने नहीं देखा, उन्हें सत्य प्रस्तुत किया गया है परंतु उन्होंने नहीं सुना। यदि वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की बात नहीं मानते तो चाहे मरे हुओं में से कोई जी उठे, फिर भी उनकी बात नहीं मानेंगे। यहूदी राष्ट्र के इतिहास में ये शब्द सत्य साबित हुए। मसीह का अंतिम और सबसे बड़ा चमत्कार बेतनी के लाजर को जीवित करना था, जो 4 दिन पहले मरा था। यहूदियों को उद्धारकर्ता की दिव्यता का यह अद्भुत प्रमाण दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। लाजर मरे हुओं में से जी उठा और उनके सामने अपनी गवाही दी, लेकिन उन्होंने सभी सबूतों के खिलाफ अपने दिलों को कठोर कर लिया और यहाँ तक कि उसकी जान लेने की कोशिश की। यूहन्ना 12:9-11 में हम यह पाते हैं, व्यवस्था और भविष्यवक्ता मनुष्यों के उद्धार के लिए परमेश्वर द्वारा नियुक्त एजेंसियां हैं। मसीह ने कहा उन्हें इन प्रमाणों पर ध्यान देना चाहिए। यदि वे परमेश्वर के वचन में उसकी वाणी को नहीं सुनते तो मृतकों में से जी उठे एक गवाह की गवाही पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। जो लोग मूसा और भविष्यवक्ताओं की बात मानते हैं उन्हें परमेश्वर द्वारा दिए गए प्रकाश से अधिक प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि मनुष्य प्रकाश को अस्वीकार करते हैं और उन्हें दिए गए अवसरों की सराहना करने में विफल रहते हैं, तो यदि मृतकों में से कोई उनके पास संदेश लेकर आए तो वे नहीं सुनेंगे, वे इस प्रमाण से भी आश्वस्त नहीं होंगे, क्योंकि जो लोग व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं को अस्वीकार करते हैं वे अपने हृदयों को इतना कठोर कर लेते हैं कि वे सभी प्रकाश को अस्वीकार कर देते हैं। भाइयों और बहनों, अब्राहम और एक बार अमीर रहे व्यक्ति के बीच की बातचीत प्रतीकात्मक है। इससे यह सबक लिया जा सकता है कि हर व्यक्ति को उससे अपेक्षित कर्तव्यों के निर्वहन के लिए पर्याप्त प्रकाश दिया गया है। मनुष्य की जिम्मेदारियां उसके अवसरों और विशेष अधिकारों के अनुपात में होती हैं। ईश्वर हर किसी को वह काम करने के लिए पर्याप्त प्रकाश और अनुग्रह देता है जो उसने उसे करने के लिए दिया है। यदि मनुष्य वह करने में विफल रहता है जिसे थोड़ा प्रकाश उसका कर्तव्य दिखाता है, तो अधिक प्रकाश केवल विश्वासघात को प्रकट करेगा, दिए गए आशीर्वाद को बेहतर बनाने में उपेक्षा करेगा। वह जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अन्यायी है वह बहुत में भी अन्यायी है, कहता है लुका 16:10 में। यह यीशु मसीह का वचन है। जो लोग मूसा और भविष्यवक्ताओं से ज्ञान प्राप्त करने से इनकार करते हैं और कुछ अद्भुत चमत्कार करने की मांग करते हैं, अगर उनकी इच्छा पूरी हो भी जाए तो वे आश्वस्त नहीं होंगे। मूसा भविष्यवक्ता परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, और व्यवस्थाएं जो परमेश्वर ने दिए हैं उस पर लोग अगर विश्वास करेंगे, उस प्रकाश में चलेंगे, तो परमेश्वर उन्हें और प्रकाश में ले चलेगा। धनवान व्यक्ति और लाजर का दृष्टांत दिखाता है कि इन व्यक्तियों द्वारा दर्शाए गए दो वर्गों का अदृश्य दुनिया में कैसे मूल्यांकन किया जाता है। यदि धन अन्याय से अर्जित ना किया जाए तो धनवान होने में कोई पाप नहीं है। धनवान व्यक्ति के पास धन होने के कारण उसकी निंदा नहीं की जाती, लेकिन यदि उसे सौंपे गए साधन स्वार्थ में खर्च किए जाते हैं तो उस पर निंदा की जाती है। बेहतर होगा कि वह अपना धन परमेश्वर के सिंहासन के पास जमा करके उसका उपयोग भलाई के लिए करे। मृत्यु किसी भी व्यक्ति को गरीब नहीं बना सकती जो इस प्रकार अनंत धन की खोज में खुद को समर्पित करता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने खजाने को अपने लिए जमा करता है वह उसमें से कुछ भी स्वर्ग नहीं ले जा सकता। उसने खुद को एक विश्वासघाती प्रबंधक साबित कर दिया है। अपने जीवन काल में उसके पास अच्छी चीजें थी, लेकिन वह परमेश्वर के प्रति अपने दायित्व को भूल गया। वह स्वर्गीय खजाने को सुरक्षित रखने में विफल रहा। हाँ प्यारो, हमें इस दुनिया में जो भी उपहार और प्रतिभाएं दी गई हैं उसे परमेश्वर के लिए उपयोग करना है, दूसरों का सेवा करना है, उनका मदद करना है। इससे हम परमेश्वर के राज में खजाना जमा करेंगे, और नहीं करेंगे तो इसे खो जाएंगे। परमेश्वर आपके साथ रहे, आपको आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं। हम सबों को तो ग्रहण कर, जो जीवन जो आशीष है तो हमें इस दुनिया में दिया उसका हम सदुपयोग करें और दूसरों का भलाई और सेवा करने में इस्तेमाल करें। पिता हमें इस जीवन में तेरे राज के लिए अपने आप को तैयार करने में मदद करते हैं। पवित्र आत्मा आशीष दे।
अपने लोगों के लिए आने वाला है मसीह, अपने लोगों के लिए देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में। आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें, या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446 पुणे 411037 महाराष्ट्र भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaventist.org।
मैं हूँ गौरव चौहान,
और मैं हूँ सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।